परम पिता को याद किए जा,
परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा, प्यारे पिता को तू याद किए जा, प्यारे पिता को तू याद किए जा, जीवन चमन आबाद किए जा, परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा।
जीता है वो बेफिकर है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है,
दुआओं से जीता है वो बेफिकर है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है,
सेवा से सबकी दुआएं लिए जा, सेवा से सबकी दुआएं लिए जा,
जीवन चमन आबाद किए जा।
तो हम ये बात समझ गए थे हम कि माइंड का हमारे ऊपर इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स हो या पॉजिटिव हो दोनों का हमारे ऊपर असर होता है। तो हमें अपने माइंड को कैसे परिवर्तन करना है इसकी थोड़ी गहराई में हमको जाना होगा। जैसा अभी आपको बताया था कि सुबह बताया कि ब्रेन में और मन में फर्क है ना, ब्रेन तो ब्रेन है ना, दिमाग दिमाग फिजिकल है, वो कितने ग्राम का है बताया मैंने आपको, 1100 से 1200 ग्राम का है, जो कि हमारी खोपड़ी के बीच में रहता है। और मन जो है वो एक वो फिजिकल चीज नहीं है, वो सटल है, सटल मीन्स नॉन फिजिकल है, और उसका वजन वैसे नहीं होता है। किंतु मन क्या चीज है, मन के चार एस्पेक्ट है ना, जैसे बताया टीम, टीम माना थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, ऐसे ही एक दिल है, ये दिल है हमारा, और दिल कितने ग्राम का होता है, 250 ग्राम का ना, 250 ग्राम्स है ना। ऐसे जो एक दिल हमारा आत्मा का भी दिल है वो कितने ग्राम का होता है, 50 नॉन फिजिकल दिल है ना वो, जैसे कहते हैं मेरे दिल में वो समा गया, कौन से इस वाले दिल में समा गया, क्या मेरे दिल में बात बैठ गई, कौन से दिल में बात बैठ गई, इस वाले में, ये तो मैंने बताया चार चैंबर हैं, कौन से चैंबर में बात बैठ गई, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर वाले राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल, कहां बैठ गई बात, कौन से वाल में बात बैठ गई, वाल्व है ना, वाल्व बताए ना, माइट्रल वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, कौन से वाल्व में बात बैठ गई, कौन सा वो दिल होता है, सोचा कभी आपने कौन सा वाला दिल है, ये वाला दिल है कि और कोई और भी कोई दिल होता है, कौन सा दिल होता है बोलो ना, वो कहां रहता है, वो दिल कहां पर है, नॉन फिजिकल दिल कहां है, नॉन फिजिकल दिल कहां होता है, एक शरीर का दिल है, जैसे एक शरीर का, एक तो शरीर का मैंने बताया शरीर का दिमाग है, ये शरीर का हिस्सा पैसा है ना, एक आत्मा का हिस्सा कौन सा है, मन है ना, ऐसे ही एक शरीर का दिल है, आत्मा का दिल कौन सा है, आत्मा का दिल है इंटेलेक्ट, बुद्धि को आत्मा का दिल कहते हैं, कहते हैं मेरे दिल में ये बात बैठ गई, अर्थात कहां बात बैठ गई, बुद्धि में बैठ गई, ठीक है, बुद्धि को भी दिल कहते हैं, ठीक है, आत्मा का दिल कौन सा है, बुद्धि, राइट, आत्मा का दिल कौन सा है, और बुद्धि का वजन कितना होता है, कितना वजन होता है, नाप नहीं सकते है ना, उसका कोई वजन नहीं होता एक्चुअली, शरीर का वजन कितना होता है, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, और आत्मा का वजन कितना होता है, कोई वजन है आत्मा का? कोई वजन नहीं। तो अभी हम जरा थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लें कि फिर इसके ऊपर हम आ जाएंगे। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और उसके नीचे क्या है, ब्रेन के एकदम नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं बॉडी की, हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके नीचे लोअर ब्रेन, ये हायर ब्रेन है, फिर नीचे उसके लोअर ब्रेन होता है। अगर आत्मा की लोकेशन देखी जाए तो आत्मा कहां रहती है, आत्मा की लोकेशन ये है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में। ये लोकेशन जहां हाइपोथैलेमस खत्म होता है और पिट्यूटरी का स्टॉक शुरू होता है, ये आत्मा का निवास स्थान है। और जो नर्व्स, आत्मा कैसे काम करती है, सॉरी, इसमें जो हमारी बॉडी कंट्रोल कैसे चलता है, जो पहली नर्व होती है, जो होती है वो नाक के लिए होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है ना, ब्रेन से, लोअर ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, तो पहली नर्व जो निकलती है उसका क्या नाम है, ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी माना पहली नर्व जो सूंघने की नर्व है, सूंघते हैं ना जो हम, सबसे रिफाइंड सेंस है इंसान की, वो क्या है, सूंघने की। सूंघने से आदमी खाली चीज के बारे नहीं बता सकता, किंतु आदमी के बारे में बता सकता है, आदमी कौन सा है, कौन आदमी है, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता क्या क्या सेंस कर लेता है ना। एक्चुअली आदमी के पास भी वो सेंस है, अगर आदमी आंखें ना हो तो सूंघ के भी अपने आप को क्लियर कर सकता है कौन आदमी उसके पास बैठा है ना। तो ये सबसे बढ़िया सेंस है। दूसरी सेंस है आंखों के देखने की नर्व, वो सेकंड नर्व है, ठीक है, देखने की नर्व जो जिससे हम देखते हैं। थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ नर्व जो है, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये जो नर्व है ये आंख को घुमाने की नर्व है, ऊपर की तरफ देखना है, इधर की तरफ देखना है, इधर की तरफ देखना है, इधर नीचे की तरफ देखना है, देखते हैं ना हम आंख को, खाली एक सामने देखते हैं, इधर भी देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, है ना। तो आंख को कहां घुमाना है उसकी नर्व होती है तीसरी, चौथी और छठी नर्व। और पांचवी जो नर्व है वो है चेहरे पे हमारे को छूता है ना, हमको सेंस करने की नर्व है ना, ऊपर सिर पे यहां तक सेंस करने की नर्व है जो है, यहां भी सेंस करने की नर्व, वो पांचवी नर्व है। और खाना चबाने की जो नर्व है वो भी पांचवी नर्व का पार्ट है, ठीक है, खाना जो चबाते हैं ना, ये जो खाना चबाते हैं वो भी पांचवी नर्व का पार्ट है। सातवीं नर्व जो है वो हमारा, सातवीं नर्व हमारे जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चेहरे पे जो भी एक्सप्रेशन आते हैं वो सातवीं नर्व के थ्रू आते हैं, सेवेंथ नर्व के थ्रू आते हैं। जैसे हंसते हैं, रोते हैं, मुंह को फुलाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो चेहरे से देखने से पता लग जाता है ना कि ये आदमी इस स्थिति में है, तो सातवीं नर्व होती है। आठवीं नर्व कौन सी होती है, आठवीं नर्व सुनने की नर्व है, हम सुनते हैं ना कान से, वो आठवीं नर्व। आठवीं नर्व के दो फंक्शन है, एक सुनना और दूसरा एक फंक्शन और भी है, दूसरा फंक्शन जो है वो है बैलेंस करना। बैलेंस माना मतलब हम जो खड़े हैं, जैसे स्पेस में मुझे अभी हम स्पेस में खड़े हैं ना, तो मुझे पता है कि मैं ऊपर नीचे साइड, इसमें तीन ऐसी कैनाल्स होती हैं जो कि वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे इस तरह से एक तीन कैनाल्स होती हैं, तीन ऐसे सर्कल से होते हैं कान के अंदर अंदर वाले हिस्से में, जिससे कि हमें इस थ्री डायमेंशनल एरिया में, ताकि हमें थ्री डायमेंशनल पहचान हो सके, कोई चीज देखनी है ना, उसकी थ्री डायमेंशनल हमारी स्थिति हमें पता लगे, दूसरे की स्थिति पता लगे, ठीक है। तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस इन द एटमॉस्फियर, उसके लिए वो आठवीं नर्व का फंक्शन है, सुनना भी और एनवायरमेंट में अपने आप को स्टडी करना भी, वो भी हमारा कौन सा नर्व का फंक्शन है, आठवीं नर्व का फंक्शन है। और नौवीं नर्व जो होती है हमारी, नौवीं नर्व का काम है बोलना। यहां पर वोकल कॉर्ड्स है ना, आवाज के तंतु हैं, वो कहां से सप्लाई होते हैं? दिमाग से। नौवीं नर्व जो निकलती है वो आवाज के तंतु, जिससे आवाज पैदा होती है। जो दसवीं नर्व है, जो खाना हम खाते हैं ना उसको निगलना, स्वॉलो करना, दसवीं नर्व का काम है। ग्यारहवीं नर्व क्या करती है? ग्यारहवीं नर्व से हम क्या करते हैं? वो दो मसल्स को सप्लाई करते हैं। एक तो ये स्टेनोक्लेरोमास्टॉइड, ये मसल देख रहे हैं यहां पर, और एक पीछे मसल ट्रेपेजियस मसल। तो हां करना और ना करना, हां जी ना जी, ठीक है, तो उसका काम है। ठीक है, हां जी और ना जी करना किसका काम है? ग्यारहवीं नर्व का काम है। ठीक है, कोई भी बात को हम हां जी ना जी करते हैं ना, तो कैसे हां जी ना जी करेंगे? ये ग्यारहवीं नर्व के थ्रू होता है। ठीक है, और बारहवीं नर्व जो है वो है जीभ की नर्व है, जीभ टंग। तो ये बारह नर्व जो है हमारी पांचों कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है। जो पांच कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक मुख कान और त्वचा स्किन, तो इसको पूरा कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है? ये बारह नर्व, मतलब आत्मा यहां है, ये ब्रेन है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन है, फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, यहां आत्मा और इसके नीचे ये नर्व निकल रही है। फिर गर्दन में आठ नर्व है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है। फिर कमर में बारह है, फिर नीचे वाली कमर में पांच है, फिर और नीचे वाले में पांच है। तो इस तरह से टोटल नर्व के द्वारा, और नर्व यहां से निकल करके पूरी बॉडी में फैली हुई, पूरी हमारी बॉडी में 70,000 से 80,000 बिलियन सेल्स हैं, हर सेल तक उसका कनेक्शन गया हुआ है ना दिमाग। तो आत्मा यहां पर कंट्रोलर है, या कह सकते ऑपरेटर है ऐसे, और दिमाग क्या है हमारा? कंट्रोल रूम है। कंट्रोलर कौन है? आत्मा। दिमाग क्या है? कंट्रोल रूम, या इसको कह सकते हो ब्रेन क्या है? कंप्यूटर। आत्मा क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, और उसका उसका कनेक्शन कहां तक गया है? हमारे शरीर में 70,000 से 80,000 बिलियन सेल्स हैं, हर सेल तक उसका कनेक्शन गया हुआ है। ठीक है, वो भाई सब अलर्ट होके बैठो, सीधे होके बैठो, सीधे सीधे अलर्ट होके बैठे, है ना? इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमारा कनेक्शन पूरी बॉडी में कंट्रोलिंग होती है। अब जो ये जो ब्रेन है, इसको हम हायर ब्रेन कहते हैं। तो ठीक नहीं होना, जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन में एक स्पेशल फंक्शन है। हमारा ब्रेन में स्पेशल फंक्शन है, जानवरों में वो फंक्शन नहीं होता। कौन सा? इंसान में कौन सा स्पेशल फंक्शन है? यस, आदमी का ब्रेन में एक स्पेशल फंक्शन है, कौन सा जो जानवरों में नहीं होता है? हंसने का। जानवर नहीं हंसते। और कोई स्पेशल? थिंकिंग। और स्पीच, ठीक है, हाँ कह सकते हैं स्पीच भी है। जानवर जैसे बोलते तो हैं, उनकी आवाज हमें समझ नहीं आती, किंतु बोलते तो वो भी, पक्षी भी बोलते हैं, हमें समझ नहीं आता है ना। ऐसे इंसानों की भाषा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, हमें समझ थोड़ी ना आती है, या कोई दूसरी भाषा बोलते हैं, हमें समझ नहीं आती। गुजरात कन्नड़ बोलते हैं ना, उधर बोलते हैं, हमें समझ कहाँ आती है? आती है क्या? तो ऐसे कहेंगे उनकी भी, उनको आज उनकी आवाज नहीं है क्या? आवाज तो है उनके अंदर, है ना, आवाज तो करते हैं ना। और क्या फंक्शन है? आप अरुणा माता आगे आ जाओ, अरुणा बहन आगे आ जाओ, अरुणा बहन आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी, क्या फंक्शन है बताइए? यस, एक जो फंक्शन है जो जानवरों में नहीं है, हम में है, उसका एक उसका नाम है एशिया, राइट? एशिया माना ए फॉर एनालिसिस। इंसान एनालाइज कर सकता है सिचुएशन को, ठीक है, कोई भी सिचुएशन होती है ना उसको, ये जो हमारा ब्रेन ब्रेन में कॉर्टेक्स है ना, ये ब्रेन में हमारे जो दो पार्ट होते हैं, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, ये बीच वाले पार्ट को मेड्यूला कहते हैं और इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। वो जो कॉर्टेक्स है वो इंसान में बहुत डेवलप्ड होता है, तो इंसान के पास वो कला है कि वो जमा घटा गुणा कर सकता है? नहीं, जानवर कर सकते हैं। तोते को आप बोलो दो गुणा दो दस, तो क्या बोलेगा तोता? तोता बोल सकता है, किंतु वो क्या बोलेगा? दो गुणा दो दस ही बोलेगा ना, है ना? और आप अपने बच्चे को बोल के बोलो दो गुणा दो दस, वो केजी में पढ़ता है, क्या कहेगा आपको? कि पापा आपको इतना भी नहीं आता है? नहीं, तोता ऐसे बोलेगा? तोते को जो भी बोलेगा ऐसे कैसा बोल देगा? जानवर को आप जो सिखाओगे वैसा सीख लेगा, हाथी भी सीख लेगा, कुत्ता भी सीख लेगा, जो भी सिखाओगे सीख लेगा, बंदर भी सीख लेगा, किंतु अपनी तरफ से कुछ नया नहीं कर सकता है। किंतु इंसान थोड़ा सीख करने के बाद भी बहुत कुछ चीजें अपनी तरफ से नहीं कर सकता है। तो इंसान एनालाइज कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, नई बातें बना सकता है, और इंटीग्रेट, फिर अपने साथ इंटीग्रेट कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है, एसिमिलेट कर सकता है, दो चीजों को देख करके समझ करके नई चीज बना सकता है ना, रिसर्च कर सकता है। कभी आपने सुना किसी जानवर ने कोई रिसर्च की हो, कुछ बनाया हो, एक पंखा बनाया हो किसी जानवर ने? हाथियों ने, शेरों ने, जंगल में हिरनों ने कुछ बना दिया हो, अपने गुफा में गर्मी लगती है तो एक पंखा ही बना लेते हैं, चलो एक ने कुछ किया ऐसा कुछ ना? गुफा में फर्श पक्का बना दिया हो, कुछ ऐसा हो, कुछ किया हो, डेवलपमेंट की हो, कुछ करते हैं क्या जानवर ऐसा? कुछ इंसान कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हम यहां से लेते हैं, आंख नाक कान मुख से, यहां से नीचे बॉडी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो यहां आके एनालाइज होती है हायर ब्रेन में। ठीक है, उसे एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करके फिर एक्शन के लिए स्टिमुलेशन दिया जाता है। और ये भी हायर ब्रेन और लोअर ब्रेन में भी कनेक्शन होता है, कुछ फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे हमारी बॉडी की क्रियाक्रम चलती है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए पहले? ये बात सबको समझ में आई? दो हायर ब्रेन, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट ब्रेन का काम है, लेफ्ट ब्रेन है हमारा, जो लेफ्ट ब्रेन है वो है हमारा लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल माना कन्वेंशनल ब्रेन, जैसे कुछ चीज होती है ना कि ये हुआ, ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, है ना? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहते भी मैंने उसकी सहायता की, तो लॉजिकल क्या है? वो भी मेरी सहायता करेगा। मैंने उसको पैसे दिए, वो मुझे भी कल मदद करेगा। आज मैंने आपको बच्चे को आज पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं, तो कल उसको मुझे, कल वो भी मुझे, मुझे मेरे बूढ़ा होने पर मेरी मदद कर, लॉजिकल है। ठीक है, कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई काम कर दे किसी के लिए, तो लॉजिकल नहीं ना? नहीं, तो राइट ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन है। इमोशनल ब्रेन वो कहता है नहीं, सबके लिए करना चाहिए, फिलंथ्रॉपिक ब्रेन है, राइट? तो इसमें बेहद समाया है, इसमें हद है। ये हद का ब्रेन है लेफ्ट वाला, और राइट क्या है? बेहद है। ये क्रिएटिव ब्रेन है, राइट साइड में क्रिएटिविटी है। तो जो और जो आदमी होते हैं ना, उनका अधिकतर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है, वो लॉजिकल बात सोचते हैं। और जो औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, वो क्या करती हैं? ज्यादातर उनका राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है, वो ज्यादातर क्रिएटिव होती हैं, जैसे स्वेटर में डिजाइन डालना, है ना, या कोई ऐसे क्रिएटिव चीज करना, वो लेडीज अधिकतर अच्छे से कर सकती हैं, आदमी को बोलो तो इतना नहीं अच्छे से कर सकता है ना, या नहीं? तो जो लेडीज होती हैं वो ज्यादा बेहद सोच सकती हैं, और आदमी हद की बातें सोच सकता है। जो बातें इम्पॉसिबल लगती है आदमी को, औरत को, ये बातें वो उसके बारे में ज्यादा अच्छा सोच सकती है। ठीक बात है, इसे राइट, मेल और फीमेल एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है ना, क्योंकि दोनों चीज चाहिए ना, हद भी चाहिए, बेहद भी चाहिए, है ना, खाली एक जैसा नहीं। किंतु कुछ समय पहले ऐसा समय था जब हर इंसान, चाहे मेल चाहे फीमेल, जैसे लक्ष्मी नारायण का समय जब बताया ना, वो समय ऐसा था दोनों ही ऐसे थे, उनके पास दोनों के दोनों ब्रेन इक्वली डेवलप्ड थे, राइट भी लेफ्ट भी। और जो मेडिटेशन से क्या फायदा होता है, मेडिटेशन से हमारा राइट ब्रेन डेवलप होता है। ये देखिए भाई सब सो रहे हैं, अभी आएगा, ये अलर्ट होके सीधे होके बैठे, अलर्ट होके। तो जो हमारा राइट ब्रेन, उससे जब एक्चुअली क्या होता है, मेडिटेशन करने से हमारे दोनों ब्रेन इक्वली डेवलप होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बेहद है, लेडीज हैं जैसे बहुत भावुक हो जाती है, इसकी भावुकता बढ़ जाती है। औरतों में क्या होता है, जब दुनिया के सिचुएशंस देखती है तो बहुत भावुक, ज्यादा भावुक, रोने लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी बात में रोएगी, ये ज्यादा भावुक हो गई। बेहद की बात सोचते मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, मेरे लिए चांद तोड़ के लाना चाहिए, तारे तोड़ के लाने चाहिए, ठीक है मेरे को ऐसा करना चाहिए, मतलब अपने लिए दूसरों से एक्सपेक्ट करती है हर हर बात के लिए, है ना, बेहद की बातें सोचेगी हर समय, है ना, और उसमें भावुक होकर के रोएगी, अपने आप को बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और आदमी लॉजिकल होकर के नहीं ये बात इसी ढंग से होना चाहिए, तो उस पर अड़ जाता है, वो उस पर अड़ जाती है, झगड़ा हो जाता है, है ना, है ना, होता नहीं होता है घरों में ऐसे झगड़ा क्यों होता है, इसी कारण से होता है, वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस पैदा हो गया। और मेडिटेशन क्या करता है, आदमी के अंदर भी बेहद की दृष्टि पैदा करता है ना, राइट ब्रेन को डेवलप करता है, और लेडीज में वो बैलेंस करता है भावुकता में और फैक्ट में। तो हमें फैक्चुअल और इमोशनल, ये फैक्चुअल ब्रेन है, ये इमोशनल ब्रेन है, तो मेडिटेशन क्या करता है, फैक्ट्स में और इमोशंस में इक्विलिब्रियम स्थापन करता है, बैलेंस पैदा करता है। जीवन में दोनों चीज चाहिए ना इंसान को, या ये एक ही चीज काफी है, दोनों चीज चाहिए ना, तो दोनों चीजें हर इंसान में आ जाए, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, तो मेडिटेशन से ये फायदा होता है, ठीक है, आप भावुक भी नहीं होंगे और ज्यादा लॉजिकल भी नहीं होंगे, बैलेंस रखेंगे। तो ये जो ब्रेन है, ये है हमारा हायर ब्रेन और ये है हमारा लोअर ब्रेन। अधिकतर जो जानवर जो होते हैं वो लोअर ब्रेन ज्यादा यूज करते हैं, और आदमी को हायर ब्रेन यूज करना चाहिए किंतु करता नहीं है। अधिकतर जो काम करते, मान लीजिए मेरे को किसी ने, जैसे आप कुत्ते को अगर छुए तो कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता सोचता है कि भी इसको इसने छुआ तो मैं क्या करूं, इसको क्यों छू रहा है ये, एकदम भौंकेगा, है ना। गधे को, गधे के पीछे खड़े हो जाओ, गधे को छेड़ने की कोशिश करो तो गधा क्या करेगा, पीछे से लत्ती मार देगा, ठीक है ना, वो सोचता नहीं है कौन किसको मार रहा हूं, है ना। तो ऐसे किंतु इंसान जो है, इंसान के पास, इंसान की जो ये जो पांच जो विकार होते हैं ना इंसान के अंदर, पांच विकार जो है वो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों विकार बेसिकली क्या है, इनको इंग्लिश में कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट्स। क्या कहते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स, अर्थात पार्श्विक वृत्तियां, पशु जैसी वृत्तियां हैं ये। कैसी वृत्तियां हैं, पशु जैसी वृत्तियां हैं। पशु क्या करते हैं, काम विकार भी उनके अंदर बहुत होता है, क्रोध भी बहुत होता है, क्रोध होता है नहीं पशु में, भैंसे में कितना और ये बंदर में कितना, सभी सभी जानवरों में क्रोध होता है, लोभ भी होता है, अपने जानवरों को खा रहे हो, किसी जानवर को खा रहे होंगे ना, दूसरा आएगा तो उसको मारेंगे, खाना नहीं देंगे, है ना, लोभ होता है, मोह भी बहुत होता है, जो अपना बच्चा होता है बंदर के अंदर, देखो बंदरी के अंदर कैसे होता है, मोह चिपका के रखती है ना? मरे हुए बच्चे को चिपका के रखेगी, उसके बच्चे को छेड़ने की कोशिश करो, सांप के बच्चे को छेड़ने की कोशिश करो, क्या करेगा, काट लेगा। मधुमक्खी का, मधुमक्खी छत्ते के पास जाओ, मधुमक्खी काटेगी, ठीक है। मतलब कोई भी जानवर देखो तो मोह भी है और अहंकार भी होता है ना, वो अपनी शक्ति का घमंड, जैसे कोबरा रात वो देखो सांप होता है ना कोबरा, उसके अंदर भी घमंड होता है कि वो अपना खड़ा फन खड़ा करके खड़ा हो जाता है ना। तो जानवरों में जितने भी जानवर है सब में ये पार्श्विक वृत्तियां ज्यादा होती है, किंतु इंसान में ये वृत्तियां ना के बराबर होनी चाहिए, किंतु आज इंसान ज्यादा ज्यादा क्या कर रहा है, ये पांचों वृत्तियां, और पांचों वृत्तियां बेसिकली क्या, रिएक्शंस हैं, एक्शन नहीं है। पांचों वृत्तियां क्या है, काम विकार क्या है, किसी की स्किन देखी, ऊपर से देखा, रूप रंग देखा तो उस पर आकर्षित हो गए। अगर उसको आप एनालाइज करो, ऊपर हायर ब्रेन लगाओ तो क्या होगा, फिर आप आकर्षित होंगे क्या, फिर आकर्षित नहीं होंगे, उस पर बुद्धि उस पर नहीं जाएगी, है ना, उस पर आपकी बुद्धि ज्यादा, मतलब उस पर इफेक्ट नहीं आएगा बुद्धि के ऊपर, है ना। ऐसे क्रोध भी क्या है, किसी ने कुछ कहा और हमने तुरंत उस पर रिएक्शन कर दिया तो उसे क्रोध कहते हैं। लोभ क्या है, कोई चीज देखी अवेलेबल है उसको लोभवश ले लिया, जरूर से ज्यादा ले लिया तो लोभ है। मोह क्या है, जो चीज आपके पास है, आपका बच्चा है कोई है, उसको आपने उसके प्रति इतना उसको बंधन में बांध दिया कि हमेशा मेरे साथ ही रहे, वो है ना। और अहंकार क्या है, किसी ने आपकी बड़ाई की, अहंकार हो गया, ईगो आ गई, है ना, तो वह अहंकार है। ठीक है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बेसिकली क्या है, ये लोअर ब्रेन की एक्शंस है, इंसान की वृत्ति नहीं है। अगर हम हायर ब्रेन को यूज कर लें तो फिर हमें ये तंग सताएंगे नहीं। ठीक बात है, ये बात समझ में आई कि ऊपर से गई, समझ में आई। तो ये वाइसेस बेसिकली आर नथिंग बट बताओ, जो पांच विकार हैं ये हमारी वीकनेसेस हैं, और ये सिर्फ एनिमल इंस्टिंक्ट्स है। अगर हम हायर ब्रेन को यूज करें तो हमें ये तंग नहीं कर सकते पांचों विकार। और पांच विकार के दो दो बच्चे भी हैं, पता है आपको कौन से बच्चे होते हैं पांच विकार के, बच्चे कौन कौन से होते हैं अविनाश भाई? हाँ, काम विकार के दो बच्चे कौन से हैं? वैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जो विकार हैं यही सब बीमारियों के जनक हैं। सब बीमारी को पैदा करने वाले कौन है, सब रोगों के जनक ये पांच विकार हैं। तो काम विकार से क्या पैदा होता है, ये जो साइंटिफिकली जो प्रूवन बात है, ये क्या, किसके कागज पड़े हुए हैं यहाँ पर, कौन से कागज, पेपर्स उड़ रहे हैं यहाँ पर ना? यश भाई किसको बोले, काम के दो दो बच्चे जो हैं वो है आलस्य, और अलबेलापन। तो दो, जैसे इसका रूल क्या है, अगर जैसे काम विकार मुख्य है, उसके उसके बारे में विचार करने से क्या होता है, हमारे अंदर आलस्य और अलबेलापन आता है, और आलस्य और अलबेलापन में आएंगे तो क्या होगा, काम विकार पैदा हो जाएगा। जब काम विकार में, काम विकार के जब विचार चलते हैं या उसके एक्शन में आते हैं, तो हम देखने में क्या आएगा, आप लेजी हो जाते हैं, सुबह उठने में लेजी हो जाएंगे, रात में सपने आते रहे उसके तो सुबह उठ नहीं पाएंगे टाइम पर, है ना, आलस्य आएगा। जो आपकी दिनचर्या, जैसे हम आपको बताएंगे दिनचर्या, जो आप जो दिनचर्या हमें उठनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, फिर जल्दी सोना चाहिए, अपने एक्यूरेट टाइम पर काम करना चाहिए, वो दिनचर्या में सारे दिनचर्या में आप आलसी हो जाएंगे, सब डिले हो जाएगी, अलबेलापन, केयरलेस हो जाएंगे। और अगर आप अपनी दिनचर्या में आलस्य आया, आलस किया या अलबेलापन लाए, तो फिर काम विकार के विचार जागृत हो जाएंगे। ऐसे क्रोध के भी दो विचार, दो वो है, इंग्लिश में कहते हैं सिनिसिज्म और दूसरा हॉस्टिलिटी। सिनिसिज्म माना फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों में दोष देखने की आदत। जो क्रोधी मनुष्य होता है वो दूसरों में हमेशा दोष देखता रहता है, इसमें ये डिफेक्ट है, इसमें ये डिफेक्ट है, इसमें ये डिफेक्ट है, उनकी पॉजिटिव बातें नहीं देखेगा किंतु हमेशा उसके दोष देखता रहेगा। और हॉस्टिलिटी माना रिवेंजफुल बिहेवियर, बदला लेने की भावना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको ऐसा करके दिखाऊंगा, ये ऐसा करके दिखाऊंगी। ठीक है, और लोभ के भी दो बच्चे हैं, जिनको लोभ होता है ना, लोभ खाली पैसे का नहीं होता है, नाम का भी लोभ होता है, नाम मान शान का भी लोभ होता है, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे लोग पूछें, है ना, मेरी शान हो, है ना, मेरे को ये चीजें मेरे पास होनी चाहिए, है ना, इसका भी लोभ होता है। लोभ के दो बच्चे कौन से होते हैं, शक और अनुमान। मोह के भी दो बच्चे होते हैं, चिंता और भय। और अहंकार के भी दो, इनके सिबलिंग्स कौन से हैं, अहंकार ना ईगो। एक तो अहंकारी व्यक्ति की नेचर जल्दीबाजी की होती है, जिसे हम टाइप ए नेचर कहते हैं, और दूसरा होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष। तो दूसरे में दोष निकालने से, बदलने की भावना रखने से फिर क्रोध आता रहता है और क्रोध से ये पैदा होते रहते हैं। लोभ से शक और अनुमान पैदा होता रहता है। लोभी व्यक्ति शक बहुत करता है, वो ऐसा कर रहा होगा, वैसे ही प्लानिंग कर रहा होगा, अनुमान लगाता है। जैसे कोई बात हो, कोई देर हो गई किसी बात में, किसी चीज में प्रॉब्लम हुई, तो कहेगा अशक उसको होगा, अनुमान लगाएगा, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। दो व्यक्ति बात करेंगे तो सोचेगा ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बात धीरे धीरे, लोभी व्यक्ति को स्किजोफ्रेनिया बहुत जल्दी होता है, बाद में जाकर स्किजोइड पर्सनैलिटी हो जाते हैं। मोह जो है चिंता और भय, जो इसको मोह होता है ना, चिंता उसको, जैसे मां को बच्चे से मोह है तो क्या करेगी मां, बच्चा स्कूल गया हुआ है तो क्या उसके मन में क्या क्या संकल्प आएंगे, स्कूल से नहीं आया तो चिंता लगी रहेगी, पता नहीं क्यों नहीं आया, पता नहीं एक्सीडेंट नहीं हो गया हो, पता नहीं उसको उठा के ना ले गया हो, है ना, किडनैप नहीं कर लिया हो, है ना। तो ये चिंता और भय, और चिंता और भय से और ज्यादा मोह पैदा होता है। फिर बच्चे को कहीं जाने नहीं देगी, कहीं शहर में कोई कुछ हो गया, दंगा हो गया तो निकलने नहीं, बच्चे को घर से निकलने नहीं देगी, बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजेगी नहीं, है ना। तो चिंता और भय से फिर और मोह पैदा होगा। ठीक है, और अहंकारी व्यक्ति क्योंकि हर चीज में अपना ईगो दिखाना चाहता है, उसकी ईगो बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो हर बात में जल्दी दिखाएगा, प्रेशर हमेशा प्रेशर में रहेगा, टाइम के प्रेशर में रहेगा, काम के प्रेशर में रहेगा, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, लोग मेरी इज्जत खराब ना हो जाए। ठीक है ना, ये काम जैसे इसी ढंग से होना, जैसे मैं कहता हूं ऐसे ही होना चाहिए, है ना। तो ही इज ऑलवेज अंडर प्रेशर ऑफ टाइम, वर्क और इज ओन हैबिट्स। परफेक्शनिस्ट होता है ऐसा आदमी, और ऐसे आदमी को सदा ईर्ष्या और द्वेष, जो जितनी जल्दीबाजी करता है, जितनी ईर्ष्या करता है, उतना और अहंकार बढ़ता जाता है। देखो मैंने हर चीज मेरी टाइम पर होती है ना, उसको अहंकार और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, वैसे तो बहुत सारी इनकी फैमिली बहुत बड़ी है पांचों विकारों की, पर मुख्य 10 बच्चे तो ये हो गए। ठीक है, ऐसे तो फैमिली इनकी बहुत है, फिर इनके बच्चों के भी बच्चे बहुत होते हैं, है ना। तो बड़ी, बहुत बड़ी फैमिली है। तो रावण के बारे आज बताना था ना मैंने, रावण, क्योंकि रावण जलाना ना थोड़ी देर में आपको, तो रावण की फैमिली है। अब ये जो है, यहां से हम जैसे अभी ईसीजी कराया ना आपने, कल आज भी ईसीजी किसी ने कराया होगा, हम छाती पर इलेक्ट्रोड लगा करके, पैरों में इलेक्ट्रोड लगा करके आपका ईसीजी करते हैं ना, ऐसे ब्रेन का हम ईईजी करते हैं। क्या करते हैं ब्रेन का हम? ईईजी करते हैं। तो ब्रेन में हमारी क्या क्या एक्टिविटी चल रही है उसको हम नाप सकते हैं। तो क्या देखने में आया है कि जब हम यहां पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो हमारी ब्रेन की रिदम, जैसे हार्ट की रेट कितनी होती है, एक सेकंड में कितने कितने सेकंड होती, कितनी एक मिनट में कितनी बार, 70 टाइम्स, 80 टाइम्स, 90 टाइम्स, 60 टाइम्स होता है। तो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कैसी होती है, एक सेकंड में हम रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक सेकंड में जो नॉर्मल रिदम होती है विद आईज ओपन, आंखें खोले हुए हमारी रिदम कैसी होती है, उसको हम बीटा रिदम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा रिदम कहते हैं। और बीटा रिदम क्या है, एक सेकंड में थर्टीन टू एटीन हर्ट्स, मतलब 13 to 18 टाइम्स पर सेकंड ऐसे से वेव करती है। और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, शांत होने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर, तो उसे कहते हैं अल्फा रिदम। वो आवृत्ति 8 से 12 पर सेकंड, वो कैसी होगी, और एक बात और देखने में आई है, अगर हम ब्रेन का, हायर ब्रेन का कनेक्शन लोअर ब्रेन से काट दें, फिजिकली काट दें, तो देखने में आता है जो जो इनहेरेंट रिदम, जो ब्रेन की, जो ऊपर वाले हायर ब्रेन की जो इनहेरेंट रिदम होती है वो कैसी होती है, डेल्टा रिदम। कौन सी होती है? डेल्टा रिदम होती है। डेल्टा रिदम कितनी होती है? 0.5 हर्ट्ज टू 3.5 हर्ट्ज। वो कैसा होता है? यस, और जो थीटा रिदम जो होती है वो होती है डीप स्लीप में, नींद जब करते हैं ना हम लोग, जब सोना शुरू करते हैं तो वो होती है 4 to 7 पर सेकंड। ठीक है। और जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो कैसा हो जाता है? जब आत्मा शरीर से निकल जाए तो क्या हो जाएगा? तो ब्रेन में जैसे हार्ट बंद हो जाता है तो हार्ट की एक फ्लैट लाइन आती है ना, ऐसे जब आत्मा निकल गई तो क्या होता है? जीरो फ्लैट लाइन। इसके अपोजिट अगर आप, वैसे शांति क्या चीज है? शांति किसे कहते हैं? व्हाट इज पीस? पीस क्या चीज है? यस, शांति के बारे में सब, शांति चाहिए ना सबको, शांति चाहिए। डेफिनेशन क्या है शांति की बताएं? हाँ जी, कैसे? फिर भी कोई तो उसकी डेफिनेशन होती होगी ना। शांति बेसिकली क्या चीज है? विचार चलते हैं ना हमारे दिमाग में, अगर विचार बहुत, अभी जैसे आप बैठे हैं ठीक ठाक 15 पे आंख खोल के बैठे हैं तो भी आप अपने आप को शांत नहीं कह सकते हैं। कुछ ना कुछ ज्यादा विचार चल रहे हैं, कुछ विचार चल रहे हैं तो आप अपने आप को मतलब ठीक है ओके कहेंगे, भाई हाउ आर यू, ठीक है बस, है ना। व्हेन वन फील्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड तो उसे शांति कहते हैं। हाँ जी, हाँ क्या करें? थॉट्स आर लेस, व्हेन थॉट्स आर लेस, राइट। जब हम नॉर्मली, जैसे मान लीजिए जितने मैंने बताया ना साइकिल्स पर सेकंड है, ये रिसर्च में पाया गया है कि जितने साइकिल्स पर सेकंड होता है लगभग उतने ही विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। जैसे अगर हमारे मिनट, हमारे दिमाग में एक मिनट में 15 विचार चलते हैं लगभग एवरेज, तो हम अपने आप को जब बीटा रिदम में होते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में 15 विचार चल, एक मिनट में 15 विचार आते हैं। 15 विचार में कुछ कॉन्शियस विचार होते हैं, कुछ सबकॉन्शियस विचार होते हैं। जैसे मैं कुछ विचार कैसे हैं, मैं डॉक्टर सोहन सो हूं, ठीक है, मेरे ये फैमिली में ये है, ऐसा ऐसा है, मुझे ये काम करना है, अब इसके बाद मुझे शाम को ये लेक्चर देना है, मुझे ऐसा करना है, शाम को ये करना है, अभी वो मिलने आने वाला है ना। ये सबकॉन्शियस माइंड में विचार चल रहे हैं, कुछ विचार